जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना की रावण चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नेताय गौर हरे वा बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। समवेत भक्त वृंद की जाय। श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पूरे एक महीने ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है। वैसे भक्तों की संख्या भी बहुत कम है दुनिया में। भक्त को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है, भक्त दुर्लभ होते हैं दुनिया में, और भक्तों के समाज में भी ऐसे बहुत कम ही हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है कि वो पूरा एक महीना ब्रजमंडल की ऐसे परिक्रमा करें भक्तों की संगति में। भक्तों की संगति में परिक्रमा करने से भक्ति के समस्त अंगों का पालन हो जाता है, कीर्तन श्रवण परिक्रमा सब कुछ हो जाता है। अभी केवल 2-3 दिनों से ही आपकी परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है, और जैसा कि अभी हम सुन चुके हैं, ब्रजभूमि प्रभु ने बताया कि परिक्रमा के क्रम में ये प्रथम वन है। वैसे ब्रजमंडल ये 84 क्रोस या 168 मील का स्थान है जो कि भगवान ने यहाँ प्रकट कराया, और इस ब्रज भूमि में और परव्योम ब्रज भूमि जो आध्यात्मिक जगत में है इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रजमंडल में आचार्यों ने अनेक वन ढूंढ निकाले हैं, करीब करीब 137 वन, लेकिन उनमें से 12 वन जो हैं प्रमुख माने जाते हैं। द्वादश वन, इनमें से जो 5 वन हैं वो यमुना जी के पूर्व भाग में हैं और 7 वन पश्चिम की ओर में हैं। तो अब यहां आप पश्चिम की ओर से परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, मथुरा में आके मथुरा से फिर यहाँ जो सर्वप्रथम वन है मधुवन, और यहाँ से आगे चल के सारे ब्रजमंडल में घूम के ब्रजमंडल की जो सीमा है उसमें चलते चलते फिर हम लौट के आएंगे वापस। हरे कृष्णा। तो यदि हम यमुना जी के उत्तर भाग के वनों को देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते आते हम देखेंगे है भद्र वन, फिर भांडीर वन, बेल वन, लोह वन और महावन, महावन अर्थात गोकुल आदि। तो ये यमुना जी के पूर्व भाग में होने वाले 5 वन हैं, और यमुना जी के पश्चिम भाग में 7 वन हैं। उनमें से मधुवन जहां हम अब बैठे हैं ये पहला वन है, इसके बाद ताल वन, कुमुद वन, बहुला वन, काम्य वन, खादिर वन और अंत में वृंदावन। तो ये 7 वन हैं जो यमुना जी के पश्चिम की ओर में हैं। तो जैसे इन 137 वनों में ये 12 वन प्रमुख हैं, वैसे इन 12 वनों में भी ये वृंदावन सबसे प्रमुख माना जाता है। अब जब हम वृंदावन कहते हैं तो हमारे मन में वृंदावन नगर की कल्पना आती है, हम सोचते हैं वृंदावन मतलब वृंदावन नगर, परंतु जिस वन की बात कर रहे हैं द्वादश वनों में जिसका नाम वृंदावन है वो केवल वृंदावन नगर नहीं है। आज जो वृंदावन नगर है वहां से नंदगांव बरसाना गोवर्धन तक की जो सीमा है वहां तक ये सारा वृंदावन है, 32 मील लंबाई, और इसमें राधा कुंड श्याम कुंड सब कुछ आ जाता है, रासमंडल इत्यादि सब यहाँ वृंदावन में आ जाता है। इसलिए इन 12 वनों में से सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है, परंतु परिक्रमा के क्रम में क्योंकि मधुवन पहले आता है तो हम यहाँ आ रहे हैं। यहां से ब्रजमंडल की सीमा को चलते चलते आप सब चलने वाले हैं एक महीने भर, और लौट के फिर से मथुरा से वृंदावन वापस आएंगे। वैसे चारों युगों में भगवान यहां आ चुके हैं। सत्ययुग में सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कृष्ण गर्भ के रूप में आए थे। आप देख चुके हैं ध्रुव टीला, गए ना वहां पे, तो ध्रुव टीला में ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे थे, और ये सत्ययुग की बात है। और बहुत तपस्या करने के बाद 6 महीने, इसकी कथा तो आप सबको पता है श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद से, इसलिए इस कथा को पुनः ज्यादा विस्तार में दोहराएंगे नहीं। परंतु ध्रुव महाराज वहां इस टीले के ऊपर बैठ के उन्होंने तपस्या की पूरे 6 महीने, उसके बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए। अब श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत नाम के ग्रंथ में बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण कर किया है, और ये सिद्ध किया है कि भगवान के जिस रूप ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया वो प्रश्नी गर्भ कहलाता है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में ये बताया गया है कि भगवान जब विभिन्न 25 अवतारों के का उल्लेख किया जा रहा है, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी भगवान के उन अवतार का नाम भी लेते हैं जो कि ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं, परंतु इस 2 स्कंद में उनका नाम नहीं कहते हैं। और उधर 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, तो वो अपनी माता देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, अपने माता के चिंता को दूर करने के लिए, क्योंकि माता तो भयभीत थी कि कंस आके कहीं मेरे बच्चे को फिर से मार न डाले। तो उस समय श्री कृष्ण ने माता देवकी से बताया, वसुदेव से भी, कि ये पहली बार नहीं है कि आप मेरे माता पिता बने हैं, अनेक साल पहले हे माता आपका नाम था प्रश्नी और पिता आप थे सुतपा, और आप दोनों प्रजापति थे, आपने बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और मेरा नाम उस समय प्रश्नी गर्भ था, क्योंकि मैं प्रश्नी देवी के गर्भ से प्रकट हुआ। उसके बाद माता आप बनी अदिति देवी और पिता आप बने कश्यप, और मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, मेरा नाम उस समय वामन देव था, और अब यह 3री बार है कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यहां प्रश्नी गर्भ यानी अवतार का नाम दिया हुआ है, लेकिन उनके कार्य नहीं दिए हुए हैं। 2 स्कंद में केवल उनका कार्य दिया है कि उन्होंने ध्रुव महाराज का उद्धार किया, ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा कर दी, ध्रुव महाराज के कपोल पे उन्होंने शंख का स्पर्श कर दिया, ये सब उल्लेख है। उनके कार्यों का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में है, 4 स्कंद में भी है, और इधर 10 स्कंद में कार्यों का उल्लेख नहीं है लेकिन केवल नाम का उल्लेख है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों वर्णनों को हमें एक साथ देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जब अवतार की बात होती है तो अवतार के नाम और अवतार के कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों को हमें समझना चाहिए। इसलिए यहां जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे भगवान, वो प्रश्नी गर्भ हैं, ऐसे रूप गोस्वामी निष्कर्ष भक्तों के सामने रखते हैं। तो प्रश्नी गर्भ जब आए ध्रुव महाराज के सामने, उन्होंने ध्रुव महाराज को बहुत से वरदान दिए, यहां तक कि ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक भी प्रदान कर दिया जो उनका निजी धाम है। तो ये सारी लीलाएं यहीं पर मधुवन में हुई। तो भगवान यहां पर सत्ययुग में प्रश्न गर्भ के रूप में प्रकट हुए थे। सत्ययुग में तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने साल बीते हुए हैं, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं, और कलयुग की अवधि साधारणतः होती है 4,32,000 वर्ष, और इससे पहले द्वापर की अवधि होती है कलयुग से 2 गुना ज्यादा, त्रेता होती है कलयुग से 3 गुना ज्यादा, और सत्ययुग होती है कलयुग से 4 गुना ज्यादा। तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि कितने साल पूर्व ये घटना हुई थी और यहीं पर पास में हुई थी इस टीले के ऊपर। तो ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, भगवान के प्राकट्य की घटनाएं हैं, ये भगवान की लीलाएं हैं। इनको दंत कथा या काल्पनिक कभी नहीं समझना चाहिए। तो ये सत्ययुग की बात है और सत्ययुग में ही इस लीला के काफी समय बाद यहाँ पर इसी मधुवन में और एक घटना हुई और वो ये थी कि यहाँ महाराज अम्बरीश, जिनका नाम आप सबने अवश्य सुना है, वो यहाँ एक साल तपस्या करने आए थे। श्रीमद् भागवत की कथा से आप सब भलीभांति परिचित हैं कि महाराज अम्बरीश एक राज ऋषि थे। हालांकि वो सारे विश्व के राजा थे, फिर भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो भक्ति के समस्त नियमों का अच्छी तरह से पालन करते थे। जब एकादशी इत्यादि या महाद्वशी, विशेष महाद्वादशी का दिन आता था तो खास करके वो पालन किया करते थे। तो पूरे एक साल उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो अम्बरीश महाराज के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में किया और निजी वो सेवा किया करते थे, किसी अपने सेवक को इत्यादि भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। अपने हाथों से, अपने पैरों से जो भी है करना है वो भगवान की सेवा करते थे। तो ये दोनों लीलाएं सत्ययुग में यहां पर हुई। इसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न यहां पर आए, वो भी भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। और त्रेता युग के समय हुआ ये कि यहां एक असुर आया जिसका नाम था मधु। ये मधु बहुत ही भयंकर असुर था और इधर उधर घूमते घूमते वो यहां पर पहुंचा और इसने सोचा कि चलो इसी को हमारा स्थान बनाया जाए। तो फिर मधु ने इस स्थान का नाम रख दिया मधुवन और यहां पे रहने लगा। उसका एक लड़का था जिसका नाम था लवण या लवणासुर और पत्नी भी थी मायादाना। तो यहां पर रहते रहते वो बहुत उत्पात मचाया करते थे। जितने भी ऋषि मुनि आदि यहाँ पे तपस्या करते या जो यज्ञ करते उनको जाके हैरान करते। यहाँ तक कि जब वो यज्ञ कर रहे होते या तपस्या कर रहे होते तो ऊपर से जाके उनके शरीर को या उनके यज्ञ स्थली आदि को प्रदूषित कर देते थे। तो ऐसी घटनाएं जब एक के बाद होने लगी तो ऋषियों ने अपने कोई दूत भेजे अयोध्या, जहां श्री रामचंद्र निवास करते थे, कि हमारी रक्षा कीजिए। पहले यहां तो ये स्थान बड़ा अच्छा था, सत्ययुग से ये एक जाना माना तीर्थ स्थान है और तपस्या के लिए बिल्कुल अनुकूल है, परंतु अब कई काफी समय से ये मधु नाम का राक्षस यहाँ हमें बहुत हैरान कर रहा है, तो कृपया हमारी समस्या का हल निकालिए। तो श्री राम ने जब ये संदेश सुना तो भगवान राम, जो कि अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे भक्तों के कष्ट को दूर करना चाहिए, भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए ही तो मैंने अवतार लिया है, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तो श्री रामचंद्र तैयार हुए निकल वहां आने के लिए, परंतु उनके छोटे भाई शत्रुघ्न ने कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, आप वहां जाने का कष्ट न करें, मैं ही स्वयं वहां जाऊंगा और इस मधु नाम के राक्षस का, इस असुर का मैं स्वयं वध करूंगा। श्री राम ने कहा कि देखो ये तो बहुत बड़ा असुर है और तुम तो युवक हो, तुम कर पाओगे? तो शत्रुघ्न ने कहा, नहीं, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। और शत्रुघ्न ने श्री राम से वरह देव की वो मूर्ति मांगी जो कि श्री राम को प्राप्त हुई थी लंका में रावण का वध करने के बाद। तो उस मूर्ति की सेवा भी करने लगे शत्रुघ्न। साथ साथ वहां पर जो लोग यहाँ ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या में आए थे, उन्होंने मधु और लवणासुर आदि के बारे में बताया, विशेष करके लवणासुर, कि ये जो लवणासुर है ये बहुत शक्तिशाली है और कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता है युद्ध में। विशेष करके इसके पास ऐसे अनेक दिव्य अस्त्र हैं जिनको अपने हाथ में रख के वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यदि आप उस समय उसके पास पहुंचोगे जब उसके हाथ में ये अस्त्र है, ये दिव्य अस्त्र है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्राय असंभव हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि जब इस असुर के हाथों में उसके दिव्य अस्त्र नहीं रहते हैं तब उसका सामना कीजिए, फिर आप वध कर पाएंगे। तो शत्रुघ्न फिर निकल पड़े। शत्रुघ्न आए यहां पर मधुवन में और मधुवन में आके ढूंढने लगे कि कहां होंगे ये सब असुर, और वहां आके देखा कि एक बहुत ही भयानक व्यक्ति जो दिखने में बहुत क्रूर था, बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, और उसके हाथ में एक अस्त्र था केवल, और साथ साथ में उसने दो मरे हुए शेर उसके साथ में थे, और एक हाथी था, एक दो मरे हुए भैंस भी थे, और बड़ा मोटा सांप था, और ये सबको अपने भुजाओं में उठाकर वो बड़े आराम से चलते जा रहा था। ये इसके रात का भोजन था। तो हम समझ सकते हैं रात को वैसे आदमी कम खाता है, दोपहर में, दिन में कम आदमी ज्यादा खा लेता है, तो रात में इतना खा लेता है, एक बार का खाना है, तो सोच लीजिए कि लवणासुर कितना भयंकर था। तो फिर शत्रुघ्न ने लवणासुर को युद्ध में ललकारा, कहा कि मुझसे अब युद्ध करो, मैं शत्रुघ्न हूं, श्री राम का छोटा भाई हूं। तो लवणासुर ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने सुना तो है, यदि तुम युद्ध करना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों को रख के आता हूँ, मेरे अस्त्र लेकर आता हूँ, फिर हम युद्ध करते हैं। तो शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं, तुम तो अभी केवल युद्ध से डर के भाग रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम जाओगे वापस नहीं आओगे, इसलिए युद्ध करना है, वास्तव में तुम शूरवीर हो तो अभी इसी समय मेरे साथ युद्ध करना। तो ऐसे जब किसी को ललकारा जाता है तो वास्तव में वो क्रोधित हो जाता है। फिर लवणासुर क्रोधित हो गया और शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने लगा। काफी धुआंधार युद्ध हुआ और शत्रुघ्न ने फिर लवणासुर की हत्या कर दी, और साथ में फिर मधु नाम के राक्षस का भी वध कर दिया। फिर आगे चल के शत्रुघ्न ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाई और इस स्थान का नाम रख दिया मधुपुरी। तो ये है मधुपुरी या मधुवन। त्रेता युग में यहां पर भगवान शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए थे। द्वापर युग में यहां पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। यहां ब्रजभूमि में गायों को चराते चराते वो एक वन के बाद दूसरे वन में जाया करते थे, वन वन में फिरा घुमा फिरा करते थे अपने बछड़ों के साथ, गायों के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। और यहां पर इसी स्थान में आके मधु का पान करते, गौओं को चराते, मधु अर्थात शहद। तो मधु तो राक्षस का नाम था ही, लेकिन यह शहद, ये मधु भी उपलब्ध था, तो श्री कृष्ण यहां आके इस मधु का पान भी किया करते थे। तो यहां पर श्री कृष्ण आके मधु का पान करते थे और बाद में आके भक्त लोग भी यहां आके यह मधु का पान करते हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा आदि, इस मधु का पान भी करते हैं। तो इस तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण यहां पर आए और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद यहां पहली बार वो वृंदावन आए। वैसे तो दो तीन बार प्रयास कर चुके थे वृंदावन के लिए आने के लिए, रवाना हो भी गए थे, लेकिन पहली बार तो केवल शांतिपुर तक गए, नित्यानंद प्रभु ने उनको आगे जाने ही नहीं दिया। दूसरी बार केवल रामकेली या कन्हई नटशाला तक गए, वहां से लौट के आ गए। तीसरी बार अपने प्रयास में महाप्रभु सफल हुए। फिर पैदल चलते चलते वो अंत में यहाँ पहुंच गए। सर्वप्रथम गोकुल से आए, गोकुल से मथुरा, मथुरा में विश्राम घाट में स्नान किया और फिर 21 वनों में उन्होंने भ्रमण किया और मधुवन में भी वो यहाँ पर आए। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस स्थान में चारों युगों में आ चुके हैं। वैसे मधुवन, इसके बारे में उल्लेख भक्ति रत्नाकर में भी आता है। तब आने के पहले हम यही थोड़े श्लोक देख रहे थे। एक तो भक्ति रत्नाकर का श्लोक है जिसमें नरहरि चक्रवर्ती द्वादश वनों में से मधुवन का गुणगान करते हैं। मथुरा वनांतर्गत मथुरा पुरी जार, जार महात्म्य कोहिते केहु नहीं पाए पार। मथुरा वन अंतर्गत मथुरा पुरी जार, मधुवन मथुरा वन अंतर्गत। तो ये जो स्थान है जो कि इस वन के अंतर्गत है, यह है मधुवन, और इसके अंदर मथुरापुरी अर्थात मथुरा शहर भी है। वन अंतर्गत मथुरापुरी जार, जार महात्म्य कोहिते केहु नहीं पाए पार। तो इस मधुवन का गुणगान करना असंभव है, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना दिव्य स्थान है। मधु दैतवध यथा कैल भगवान, यही हेतु मधुवन मथुरा आख्यान। मधु दैत वध यथा कैल भगवान, तो मधु नाम के दैत या राक्षस या असुर का वध भगवान ने यहाँ किया, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया, मथुरा मंडल के अंदर स्थान का नाम हो गया मधुवन या मधुपुरी। फिर स्कंद पुराण के मथुरा खंड में भी एक वर्णन आता है, मथुरा वनम प्रथमतो यत्र वै मथुरापुरी, मधु दैत्य हतो यत्र हरिणा विश्वमूर्तिना। इसका मतलब ये है कि मथुरा वनम प्रथमतो यत्र वै मथुरापुरी, तो सर्वप्रथम मथुरा मंडल में यहाँ ये है मधुपुरी या मधुवन, और यहाँ पर साथ में मथुरापुरी भी है। मधु दैत्य हतो यत्र, जहां मधु असुर का वध किया गया था, हरिणा भगवान श्री हरि ने विश्वमूर्तिना जो विश्व रूप भी है इस सारे सृष्टि के, तो भगवान श्री हरि ने यहां इस स्थान में मधु नाम के राक्षस या असुर का वध किया था। उसी प्रकार से मथुरा महात्म्य में ये श्लोक आता है, रम्यम मधुवनम नाम विष्णु स्थानम अनुत्तमम, यद दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान कामान अवाप्नुयात। रम्यम मधुवनम नाम विष्णु स्थानम अनुत्तमम, तो ये विष्णु का स्थान है मधुवन, अनुत्तम है, बहुत ही रम्य स्थान है। रम्यम मधुवनम नाम, और इसका नाम मधुवन है। यद दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान कामान अवाप्नुयात, ये देवी जिस स्थान का दर्शन करने मात्र से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ये है मधुवन। तो मधुवन ये सुंदर स्थान जिस स्थान में हम बैठे हैं, दर्शन तो हम सभी इस स्थान का कर रहे हैं, इसलिए अभी कोई इच्छा करनी चाहिए, लेकिन किस तरह की इच्छा हम करेंगे या हमें करना चाहिए, हम यही इच्छा करें कि हम भी राधा कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, हमें भी श्री वृंदावन धाम के प्रति शुद्ध भक्ति या आसक्ति या आकर्षण उत्पन्न हो, हमारे हृदय में जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उनका निवारण हो जाए। ऐसे जो इच्छाएं हैं ये अनुकूल हैं, इनको हम चाह सकते हैं भगवान से, लेकिन इसके विपरीत कोई भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, कोई भौतिक प्रगति के लिए यहाँ कोई इस मधुवन में या ब्रजमंडल में नहीं मांगना चाहिए। केवल भक्ति में प्रगति हमारी हो और जितने भी भक्ति में विघ्न हैं उनका विनाश हो, विशेष करके हमारा जो हृदय है जिसमें तरह तरह के अनर्थ हैं उनका विनाश हो, ऐसी प्रार्थना या ऐसी इच्छा अवश्य हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ हैं मधुबन में, क्योंकि ऐसे श्लोक में विशेष करके बताया गया है, तो 5 सेकंड आप जरा प्रार्थना कीजिए अपने मन में। हम सब प्रार्थना करेंगे यहाँ, क्योंकि भगवान तो यहाँ कहते ही हैं कि जो इस स्थान को देखता मात्र है, जो दर्शन मात्र करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि कैसी इच्छाएं इस समय हमारे मन में है, तो गलत इच्छाओं को मन में से निकालना चाहिए। यही एक प्रार्थना भगवान के मन में कि बस हमें कृष्ण प्रेम चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो 5 सेकंड कृपया अभी सभी अपने ही मन में गंभीरता से ऐसे प्रार्थना कीजिए मधुबन के चरणों में, भगवान के चरणों में। यही हमारा भाव सारे ब्रजमंडल के परिक्रमा के दौरान रहना चाहिए, बल्कि यही हमारा भाव आजीवन भर रहना चाहिए, नित्य रूप से रहना चाहिए। तब शीघ्र ही हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर लेंगे और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पास में कृष्ण कुंड है, आप दर्शन कर चुके हैं कृष्ण कुंड का। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से कुंड उत्पन्न कराया और पास में यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है। गाँव जी दाएं हाथ ऊपर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ बलराम जी की मूर्ति की विशेषता ये है कि इनका रंग काला है। आप तो जानते हैं कि श्री कृष्ण सांवले रंग के होते हैं और बलराम जी गोरे होते हैं, और जब भी बलराम जी की मूर्तियां हम देखते हैं तो वो अक्सर सफेद रंग की होते हैं, लेकिन यहाँ बलराम जी की मूर्ति काले रंग की है। और इसके पीछे ऐसी लीला बताई जाती है कि एक बार बलराम जी ब्रज में जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों को देखा जो श्री कृष्ण के विरह में थी, बहुत विलाप कर रही थी, और उनका भाव देखकर बलराम जी बहुत प्रभावित हुए। उनका शोक मिटाने के लिए बलराम जी ने श्री कृष्ण का गुणगान करना आरंभ किया, साथ साथ श्री कृष्ण के पवित्र नामों का भी उच्चारण करते जा रहे थे। स्वयं बलराम जी भी भाव विभोर हो गए और श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते करते उनका जो गोरा रंग है वो काला बन गया, और इसलिए यहां बलराम जी की जो मूर्ति है वो काले रंग की है। साथ साथ में शत्रुघ्न जी की भी मूर्ति यहाँ पर है, छोटा सा मंदिर है पुराना। वैसे 2-3 साल पहले हम यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा में आए थे, लेकिन सीधे ध्रुव नारायण मंदिर में गए थे, और उसके पहले जब हम ब्रजमंडल यहाँ मधुबन आए थे तो शत्रुघ्न मंदिर में आए बहुत साल हो गए, इसलिए हम भूल गए थे कि कहाँ है। तब इष्ट देव प्रभु ले गए पुराने शत्रुघ्न मंदिर में, कई नए मंदिर भी इधर उधर बन चुके हैं, लेकिन सबसे पुराना मंदिर यही है, कृष्ण कुंड के पास में ही है। शत्रुघ्न जी विराजमान है वहां पर, और टीले के ऊपर भी ध्रुव नारायण मंदिर है, वहां पर कृष्ण गर्भ विराजमान है, ध्रुव महाराज भी वहां पर हैं। तो ये सारे स्थान या दर्शन करने लायक यहाँ पर इस स्थान में मधुबन में है, मधुपुरी में। इसके बाद आप कल आगे चलने वाले हैं ताल वन में, हमें बताया गया कि तालवन में शायद आप ज्यादा रुकेंगे नहीं, आप रुकेंगे क्या तालवन? नहीं, तो इसलिए संक्षेप में तालवन की कथा भी बताने के लिए हमसे कहा गया था। तो यहां से आप चलते जाएंगे, कल आप पहुंचेंगे तालवन। तो तालवन में भी बहुत सुंदर लीला हुई थी भगवान की। भगवान श्री कृष्ण अपने सख्य रस का आस्वादन कर रहे थे, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते करते, विचरण करते करते जा रहे थे। गाय उधर अपनी चर रही थी, तो उनके मित्रों ने, ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण बलराम से कहा कि आप दोनों तो बहुत सक्षम हो दुष्टों का वध करने के लिए, और यहाँ पास में एक बहुत सुंदर वन है जहाँ अनेक ताल वृक्ष हैं, और हर एक वृक्ष के ऊपर ये स्वादिष्ट से स्वादिष्ट ताल के फल हैं जिनको हम चखना चाहते हैं। हमें अभी बहुत भूख लग गया है, और ये जो, क्योंकि आप तो वैसे ही वध करते हो असुरों का, तो ये भूख नाम का जो असुर है इसका भी वध करना चाहिए, और आप हमें वो ताल वृक्ष, ताल फल खाने के लिए ऐसी व्यवस्था करो। लेकिन वहां पे भयंकर असुर है जिसका नाम है धेनुकासुर, वो वहां पे ताल वृक्ष में, तालवन में रहता है, और उसके साथ भी अनेक उसके और साथी हैं, असुर हैं, और सब ने गधों का रूप धारण किया हुआ है, और किसी को प्रवेश करने नहीं देता है वे। तो कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है। तो कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ अंदर चले गए तालवन में, और बलराम जी जैसे ही आए उन्होंने एक ताल वृक्ष को अपने कर कमलों से स्पर्श किया और बड़े जोर से हिलाने लगे, और जैसे हिलाए तो सारे फल नीचे गिर पड़े, और ग्वाल बाल बड़े आनंद से खाने जा रहे थे कि ये सब आवाज वगैरह सुनकर धेनुकासुर ने सोचा कि ये क्या आवाज है, मेरे इलाके में कौन आ गया बिना मेरी अनुमति के। तो बड़े क्रोधित होकर धेनुकासुर वहां पर आया, देखा कि ये दो सुंदर बालक हैं, एक तो गोरा है दूसरा सांवला है, और यहाँ आकर ये अनेक बच्चों को साथ में ले आकर सब वृक्षों का, हमारे फलों का भोग कर रहे हैं। तो आक्रमण किया उसने बलराम की ओर, तो बलराम ने बड़े आसानी से उस धेनुकासुर के पिछले पांवों को पकड़ के ऐसे घुमाया, और इतने जोर से घुमाया कि घुमाते घुमाते ही उसके प्राण निकल गए, और फिर उसे ऊंचे फेंक दिया आसमान में, और किसी ऊंचे ताल पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर वो गिर पड़ा। जब ये सुना और देखा धेनुकासुर के साथियों ने, तो सब भी दौड़ते हुए कृष्ण बलराम की ओर आ गए, और कृष्ण बलराम ने उसी तरह से इन सब का वध कर दिया जैसे कि बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। एक के बाद एक जैसे जैसे वो आक्रमण करके आते, आक्रमण के रूप में आते, तो वो उनके पीछे के पैर पकड़ के उनको घुमा के ऊपर फेंक देते थे, और ऐसे लग रहा था कि बहुत सारा वृक्ष जो है बहुत रंगीन, सारे जंगल है बहुत रंगीन बन गया, क्योंकि ये ताल वृक्ष थे, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, ऊपर अनेक रंगों के जो असुर थे वो सब पड़े हुए थे एक एक जगह। और ऐसे कृष्ण और बलराम दोनों ने तालवन को इन असुरों से मुक्त कर दिया, और इसके बाद सारे ब्रजवासी आकर इस तालवन के स्वादिष्ट फलों को चखने के लिए मुक्त हो गए। तो ये तालवन में भगवान श्री कृष्ण ने और श्री बलराम जी ने लीला की थी। तो ऐसे आप तालवन में जाएंगे, आगे चलते चलते एक एक स्थान में आप आगे चलेंगे। जब आप जाएंगे तो पूरे इस एक महीने का ऐसे ही फायदा लीजिएगा, कोई बीच में प्रजल्प न करें, कोई ज्यादा सुविधा की प्रतीक्षा या अपेक्षा न करें। हमारे भक्तों ने बहुत परिश्रम किया है, यहाँ आपके लिए सुविधा बनाई है, अनेक जंगल में मंगल हो गया है, कुछ है नहीं यहाँ, फिर भी आपके लिए प्रसाद है, रहने की व्यवस्था है, अनेक चीजें हैं। तो तीर्थ यात्रा में जब हम जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो तपस्या करना आवश्यक होता है। ये तीर्थ यात्रा का एक नियम होता है कि तपस्या होनी चाहिए, तपस्या के बिना हमारी तीर्थ यात्रा अपूर्ण होती है। इसलिए यदि कभी कोई सुविधा में योजना में कोई कम ज्यादा कुछ हो भी जाए, कोई असुविधा हो भी जाए, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। मन में भी समझ लेना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण यहाँ धाम में आके परिक्रमा में ब्रजमंडल में थोड़ी बहुत तपस्या करने में मदद कर रहे हैं, हमें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे प्रसन्न चित्त से इस कष्ट को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जब हम चलते हैं, हम में से हो सकता है अधिकतर लोग शहर में रहने वाले लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा चलने की आदत नहीं है, तो हो सकता है पैर दर्द करें, कुछ शरीर दर्द करें, कभी कुछ असुविधा हो, तो शारीरिक कष्ट को ज्यादा ध्यान में न रखते हुए हम ज्यादा इस चीज पर ध्यान दें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भक्तों की संगति में हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत की भावना से पूरी तरह से मुक्त रह के, बड़े प्रेम से भक्तों के साथ में रह के हुए, बड़ी नम्रता से अन्यों को सुविधा प्रदान करके अपने आप के लिए सुविधा न चाह के, ये भाव से हमारी परिक्रमा वास्तव में सार्थक हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।